ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
स्वधाम पितृव्य, पिताओं के लिए स्वधा, जब पितरों को देते हैं, देवताओं को देते थे कहते स्वाहा, पितृ को देते थे स्वाहा नहीं कहते, वहां कहते स्वधा, स्वधा कहके पितृव्य. आशा मनुष्यभ्य, मनुष्य के लिए आशा, प्रार्थना, जो चाहते प्रार्थित फल उनको दे. तृणोदकम पशुभ्य, और पशु के लिए तृण घास और जल, तृणोदकम. स्वर्गम लोकम यजमानाय, ऋतिक से चिंतन करता है यजमान को स्वर्ग प्राप्त हो. अन्नम आत्मने आगायनी, अपने लिए अन्न प्राप्त हो. आत्मने केवल अन्न का रोटी चावल भात नहीं, खाद्य जितने आवश्यक प्राप्त हो जाए, वो आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है. और जो केवल कर्म करते वेद पढ़ते उनको अन्न आवश्यक है, घृत आदि भी आवश्यक है. इसी में भी मंत्र में भी कर्म करते समय इसे आगान करे, मनसा ध्यान करे, चिंतन करे. मनसाध्यायन अप्रमत स्तुवित, मन से ध्यान करते हुए अप्रमत प्रमाद रहित होकर के. ध्यान शब्द ध्यान में के ध्यान प्रसिद्ध है, लोग ध्यान करते. ध्यान शब्द का अर्थ खाली आंख बंद कर देना, शरीर सीधा कर देना, ऐसा नहीं. चिंतन, तो चिंतन तो सब करते ही, मन से तो चिंतन होता है, किंतु सब चिंतन नहीं, एक चिंतन लगातार करे. ध्येय चिंतायाम, चिंतन का बिल्कुल अभाव कर दे, खाली हो जाए वो नहीं. कोई कोई खाली हो गया खुश होते हो गया, लयावस्थाएं क्या जाती है. ध्येय का चिंतन करना है ध्यान. पहले तत्र प्रत्येकता ध्यान, कि जहां देशबंध चित्त से धारणा, चित्त को लेकर किस दृश्य में लगाना, ये धारणा हुई. उसके बाद उसी स्थल पर उसको लगातार चिंतन करे, उसका नाम ध्यान. ध्येय का चिंतन है ध्यान. ध्येय क्या निर्णय नहीं करके ध्यान, कोई तो ध्यान करते पूछा किसका ध्यान करते हो, बोलते तो हम ध्यान करते हैं, हम ध्यान करते हैं. ध्यान करते तो किसका ध्यान करते हो वो पता नहीं, ध्यान करते. ध्येय क्या मालूम नहीं, ध्यान करते हैं, वो ध्यान नहीं. चित्तवृत्ति निरोधता आया प्रही रही, किन्तु ध्यान क्या है. योग चित्तवृत्ति निरोधता पहले सूत्र है, किन्तु ध्यान क्या है. तत्र प्रत्येकतानता, तत्र तस्मिन विषय, किस ध्येय में प्रत्येक चिंतन लगातार चले. ध्येय में चिंतन लगातार चले, ये ध्यान है. ध्येय मालूम नहीं खाली ध्यान, ऐसा नहीं होता है. ध्येय कोई है, चिंतन करना ध्यान. ये यदि कुछ भी ध्येय के बिना इसे खाली मन हो गया, चिंतन ही नहीं रहा, ध्यान कहाँ हुआ. ध्यान में बैठते तो मन तो भागता ही रहता है, इधर उधर विक्षेप होता है. बहुत प्रयत्न करके मन को हटा करके जब लगाते हैं, ये भी कोई लक्ष्य निश्चय होकर के ध्येय में मन को लगाए तब तो मन हटता है. और मन से विक्षेप हट गया तब तो एक अवस्था आती है लय अवस्था. बहुत में इसे विक्षेप तो बहुत होता ही है, बहुत प्रयत्न करके मन को थोड़ा लगाया तो लयावस्था, निद्रा होने की पूर्व अवस्था. निद कितने लोग तो सो जाते हैं, निदा नींद आ जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते फिर बढ़ जाते हैं. ऐसे करते करते एक घंटा कट जाते, खुश होते, बड़ा अच्छा ध्यान लग गया. ध्यान क्या हुआ, ऐसे ही ध्यान थोड़ी देर फिर शांति हो गया, फिर मन फिर इधर उधर हो गया, फिर थोड़ी चिंता गया, फिर सो गया. और एक कसाय ऐसे ही कुछ नहीं, स्तब्ध हो जाता मन विषय. इसे लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः सकसायम विजानियात समम प्राप्तम न चाह रहे थे. मांडू को कार्यक्रम में गौड़पाद ने कहा लय संबोधय, लय अवस्था में चित्तम सम्यक बोधय, तुम्हारे जो चिंतन करते हो अहम से ब्रह्म चिंतन करते हो उसको बोधन कराओ, अथवा लक्ष्य का चिंतन कराओ. लय अवस्था में मन को लगाओ लक्ष्य में, मन खाली हो गया तो ध्यान नहीं हुआ. बहुत लोग सोचते हैं चित्तवृत्ति निरोध मन खाली कर रह जाना. पहले क्या खाली करना कठिन होता है, इसे खाली करने के लिए कहते हैं, किंतु खाली पूरा करके रह गया तो ध्यान नहीं हुआ. लक्ष्य का चिंतन होना चाहिए. लय अवस्था हो तो चित्तम सम्यक बोधय, चित्त को बोधन कराकर लक्ष्य में लगाए. और फिर मन जब लयावस्था से हट जाए, लयावस्था में तो सोच लेते बड़ा ध्यान लगा, और लयावस्था से अपने स्वरूप ध्यान ध्येय का मन में लगाए, ध्येय में मन को लगाया तो मन फिर बाहर ही भाग जाएगा। तो विक्षिप्तम समयपूर्ण फिर विक्षेप का थू ला करके मन में लगाओ, लयावस्था में लक्ष्य में लगाओ, बाहर चला गया तो फिर ला कर लगाओ। और एक सकसाया कसाया स्तब्ध हो जाता मन, विषय चिंतन नहीं, लय नहीं हुआ, ऐसे करके रह गया, वो भी ठीक नहीं। उसको समझे, वो ध्यान समझ कर प्रसन्न नहीं हो, एक रसास्वाद होता है, थोड़े समय रह गया बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा ध्यान लक्ष्य चिंतन छोड़ दिया, इधर रसास्वाद करने लगा, बड़ा अच्छा ध्यान कर रहा हूं और मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भावना चलती तो ध्यान कहां, लक्ष्य चिंतन इतने करे तो अब मैं ध्यान कर रहा हूं ये भावना भी नहीं हो, रसास्वाद भी नहीं हो, विक्षेप नहीं हो, लय भी नहीं हो, लगातार चले तो ध्यान होता है। फिर इसे ध्यान करते करते जब ध्याता ध्यान ध्येय ये भावना छोड़ जाए, छूट जाए, ध्यात्व ध्यान परित्यज क्रमात् ध्येय का गोचर, क्रम से होता है, एक साथ नहीं होता है, निवात दीप व चित्तम समाधि, तब समाधि होती है। तो इसलिए ऐसे करना पड़ता है, अलग अलग सब चिंतन करके फिर बाद में हटा करके लगाए, तो इसी प्रकार चिंतन ध्यान करना पड़ता है। और जब यहां मनुषाध्यायन अप्रमत स्तुभित, जो स्तुति पाठ स्तोत्र पाठ करते हैं, मन से परमात्मा का ध्यान भी करे और स्तोत्र पाठ करते समय उसमें भी अप्रमत हो, प्रमाद रहित होकर स्तोत्र पाठ करे। एक तो ध्यान स्तोत्र के बिना बैठकर ध्यान करते हैं जप के बिना, और कभी जप के साथ ध्यान करते हैं, कभी स्तोत्र करके भी ध्यान करते हैं। तो स्तोत्र करते समय ध्यान पाठ करते तो ध्यान करते समय स्तोत्र पाठ में अप्रमत्त स्तुभित प्रमाद रहित होकर के, प्रमाद क्या है, पाठ में प्रमाद होता है, वर्ण का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, कहीं वर्ण छूट गया, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण उसमें श श स ये सब का उच्चारण पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। बहुत समय में पाठ करना नियम इतने पाठ करना उसको कर लेना और जल्दीबाजी कर इधर उधर छोड़ कर दिया, अशुद्ध बोल दिया, ऐसा नहीं, शुद्ध उच्चारण सीख करके ह्रस्व दीर्घ, एक मात्रा ह्रस्व तो दीर्घ दो मात्रा है, दीर्घ ऐसे सूत्रम ऐसे बोलते समय ह्रस्व दीर्घ राम रा दीर्घ है तो म ह्रस्व है, रामा करके दोनों को बराबर कर दिया तो दोनों दीर्घ हो गया, एक दीर्घ एक ह्रस्व राम म उच्चारण ह्रस्व होता है समृद्ध होता है, ऐसे मुख को फाड़ कर बोलो और नहीं होगा आ हो जाएगा। जो रामा बोलते है ना बोलने का कहानी के मुख ऐसे खोल कर बोले, ऐसे खोल कर बोले तो और नहीं होगा समृद्ध होता रा म ऐसे पुष्ट ऐसे होता म ऐसे होगा ऐसे मुख करे तो आ हो जाएगा। इसे समृद्ध विवृत ये भी समझना, उच्चारण करते समय इसे मंत्र रामाय शिवाय य है, शिव है शिवा नहीं शिव, शिव है शिवजी कहते हैं, वो पांडुरंग राम कृष्ण आगच्छ आगच्छ गच्छ गच्छामि, इस ह्रस्व दीर्घ ये भी देखे, ये दीर्घ है लघु गुरु भी विचार करे, एक गुरु चरण होता है, गुरु चरण होता है तो आगे संयोग है तो जैसे पंचधा है, पंचधा पंचधा पंच में प में तो ह्रस्व है, यहां से आगे संयोग है तो अ को गुरु करना पड़ेगा, गुरु करने के लिए एक यहां को इसके पैं पैं कर यहां को इधर बोला फिर इंच पंच दंत दंत द के साथ न को अधा बोलो दंत, बीच में जीवा छोड़ना नहीं तब गुरु होगा, न तो है अंत वेदांत अंत अंत एक कष्ट कष्ट बोलते कष्ट कष्ट बोलते समय कष्ट एक गुरु होता है, संयोग गुरु पशुभ्य 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 कह दिया गुरु नहीं हुआ, पशुभ्य हरिणा हरेभ्याम हरेभ्य मुनिना मुनेभ्याम मुनिभिः मुनये मुनिभ्याम मुनेभ्य मुनेभ्य कहते समय मुनि में ईद ह्रस्व है उसको गुरु करना पड़ेगा, आगे भ यह है, गुरु करने के लिए उत्तर भ में जो प्रथम भ को मुनि के साथ जोड़ो, मुनि मुनिभ्य मुनि भी कह करके उसको छोड़ना नहीं, मुनिभ्य ऐसा उच्चारण करना पड़ता है गुरु उच्चारण। तो इसे कहते स्तुति करते समय अप्रमत स्तुवित, अप्रमत के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं स्वर उष्म व्यंजनादि से प्रमाद रहित होकर कर स्तवन करे। सर्वे स्वरा इंद्र से आत्मान सर्व उष्मान प्रजापतेरात्मान सर्वे स्पर्शा मृत्युरात्मान स्तं यदि स्वरेषु पालभेतेन्द्रं शरणं प्रपन्व भुवं सत्वा प्रतिवक्षति तेनं ब्रूयात। सर्वे स्वरा स्वरवन अ ई ऊ री ली अति स्वरवन इंद्र से आत्मन इंद्र के स्वरूप ही बलकर्मा इंद्र प्राण उनके अवयव स्वरूप ही। सर्वे उष्मान प्रजापते उष्मवर्ण श ये बोलते समय कर्म निकलता ये किसका है प्रजापति के स्वरूप ही। सर्वे स्पर्शा स्पर्शवन कहते कादेव आवसना स्पर्श क ख पांच वर्ग प्रत्येक वर्ग में पांच पांच पच्चीस हो जाएंगे मालूम है क ख ग घ ये पांच हुआ क वर्ग क्या के च वर्ग आया च छ पांच फिर ट वर्ग आया ट ट ड ठ न फिर त वर्ग त थ द ध न फिर प वर्ग प प ब भ म क से लेकर मत आएगा तो पच्चीस हो जाएगा ये स्पर्श वर्ण है। मृत्यु और आत्मा न मृत्यु के स्वरूप आत्मा है देह के अवयव सामान ऐसे उच्चारण करते समय यदि कोई कहता है तुम्हारे उच्चारण में गलती हो गई तम यदि स्वरेश उपालभेद कोई दोष दे तुम्हारे स्वर वर्ण में उच्चारण दुष्ट दोष युक्त हुआ तो उपासना करने वाले कहेगा इंद्रम शरणम प्रपन्न भूवम क्योंकि स्वर वर्ण है किसका इंद्र का इंद्र का तो मैं इंद्र देवता के शरण में प्रावस्थित हूं शरण में आ गया सत्वा प्रतिवक्षति इसका उत्तर तुमको देगा यदि मेरे स्वर वर्ण में गलती हो तो इंद्र के शरण में मैं हूं। जो कोई दोष देने वाले को ये कहेगा इंद्र तुमको कहेगा इंद्र तुमको इसका उत्तर देगा अर्थात इस उपासना करने वाले में कहीं त्रुटि हो जाए तो दूसरे व्यक्ति उसको नहीं ऐसा कहे कहने का अधिकार जिसका हो कहेगा जैसे कि ब्रह्मा होते हैं ब्रह्मा होता है दोष मार्जन करने के लिए कहेंगे दूसरे व्यक्ति कहेगा आपने उच्चारण गलत कर दिया जो उपासक है यदि उसको दोषारोप किया किसने वो कहेगा मैं इस देवता के शरण में हूं वो देवता तुमको उत्तर देगा ये तम प्रतिवक्षति एनम रुयात अथ यद्यनम उष्म सुपालभेद प्रजापति शरण प्रपन्न भुवम सत्व प्रतिपेक्षति तेनम ब्रूयात अथ यद्यनम स्पर्शे सुपालभेद मृत्यु शरण प्रपन्न भुवम सत्व प्रतिधक्षति तेनम ब्रूयात। ये ऋत्यु उपासना करता है उपासना करके शुद्ध उच्चारण तो करना चाहिए अशुद्ध नहीं होना चाहिए शुद्ध करने के बाद भी कोई यदि उसको दोषारोप करे ये नहीं कि बिल्कुल गलत बोलता है कोई कहने से इसे कह देने से डरा देना ऐसा नहीं अप्रमत होकर उच्चारण करता है तो भी यदि कोई दोष देता है उष्मा वर्ण में कोई दोष दे तुम्हारे स स्पष्ट उच्चारण नहीं हुआ तो कहे प्रजापति के शरण में मैं हूं सत्वा प्रतिपेक्ष प्रतिकूल से पीस डालेगा ऐसे यदि दोष देते तुम ऐसा कहे अथ यदि एनम स्पर्शेशु स्पर्शवन का ख गादि तो मृत्युम शरण मृत्यु देवता के शरण में मैं हो गया हूं सत्वा प्रतिधक्षति तुमको जला डालेगा ऐसे कहते भस्म कर दे। ये भी कौन कहता है जो उपासक ऋत्वि के ये कहा गया ये उपासना करने से सामर्थ्य आता है खाली कहते नहीं होता है उपासना इतने दृढ़ हो और उसके बाद भी अप्रमत्त होकर के ठीक उच्चारण करे ध्यान भी करे उच्चारण भी ठीक करे उसके बाद भी यदि कोई दोष देता है कभी कभी ऐसा होता है कोई सहन नहीं करके ईर्ष्या के कारण ऐसे कहते दोष दिखा देते गलत बोलते हैं ये सामान्य साधक के लिए ये सब जरूरत नहीं है जो इसे उपासक है और उच्चारण स्पष्ट से ठीक करता है उसके बाद भी कोई कहता है तो उसके लिए कहा साधारण तो उच्चारण करते समय गलत हो जाता है गलत उच्चारण बहुत स्वाभाविक है बहुत अप्रमत होकर करे तभी बड़ा कठिन है शुद्ध उच्चारण करने वाले बहुत विरल है बहुत बड़े बड़े बोलते हैं तो बहुत उच्चारण अशुद्ध कर देते हैं। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या इंद्रे बलम ददानीति सर्व उष्मान अग्रस्ता निरस्ता विवृता वक्तव्या प्रजापतेरात्मान परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानभिहिता वक्तव्या मृत्युरात्मान परिहरानीति ये सर्वेश्वरा अ ई ऊ आदि स्वरवन उच्चारण करते समय घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या घोष शब्द हो बलवान स्पष्ट उच्चारण हो इंद्र बलम ददानीति इंद्र देवता में बल में देता हूं सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या इंद्र बलम ददानीति इंद्र में मैं बल देता हूं इंद्र देवता का चिंतन करता हूं ऐसे सोच करके उच्चारण करते समय ये इंद्र का है तो सारे बल उस समय दे करके ठीक उच्चारण करें देवता का स्मरण करें सर्वे उष्माणो अग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या उष्मा वर्ण है श श स उच्चारण करते समय जैसे उसको ग्रास कर लिया कोई वर्ण बोलते समय बाहर कुछ निकलता है कुछ अंदर रह गया जैसे खाते समय अंदर कुछ रह गया कोई बोलते खा लेते हैं वर्ण का खा लेते मतलब निगल लेते हैं बाहर निकलता नहीं बाहर एक दो शब्द वर्ण आया और दो तीन अंदर रह गया उच्चारण करना है दूसरे को सुनाई पड़े दूसरे को सुनाई पड़े से उच्चारण करना नहीं तो उच्चारण व्यर्थ हुआ जब मंत्र जप करते हैं मानस जप करते हैं ऐसे पांच जप करते अलग बात है पाठ करते समय उच्चारण करें उच्चारण करते समय प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए तो ग्रास नहीं किया अथवा निरस्ता मतलब वायु फेंक दिया बाहर ये भी नहीं है विवृता विवृत प्रयत्न से उच्चारण करना है प्रजापतिर आत्मान परिददानीति ये प्रजापति के स्वरूप है उनको मैं देता हूं उच्चारण करते समय प्रजापति देवता के स्वरूप है ये वर्ण उनको मैं देता हूं आगे सर्वे स्पर्शवन का से क से लेकर मत लेशेन अनभिहिता अभिनहेन अनभिनिहिता थोड़े से भी अभिनिहित नहीं हो अति द्रुत नहीं उच्चारण वर्ण उच्चारण करते समय अति द्रुत नहीं हो ऐसे उच्चारण करे वक्तव्या मृत्युर आत्मानं परिहराणी थी मृत्यु के आत्मानं जैसे कोई छोटे बच्चे को लेते हैं बिल्ली आदि व्याघ्री भी लेते हैं ना गिर जाए ना कि दांत से चबाए व्याघ्री यथा हरित पुत्रम जैसे बिल्ली को देखा होगा बच्चे को लेकर जाते समय मुख में लेकर चल जाए मुख में लेते समय ऐसा कि मुख से गिर न जाए और दांत उसमें लगे नहीं इसी प्रकार तो उच्चारण करते समय इस प्रकार फेंका नहीं जाए अंदर नहीं हो ऐसे करके अप्रमत्त होकर के उच्चारण करे अभी द्वादश खंड हुआ है अभी त्रयोदश खंड में अभी धर्म के विषय में विचार आएगा त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययन दानमिति प्रथम तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्य आचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थोमृतत्वमेति त्रयो धर्म स्कंधा तीन है धर्म के स्कंध स्कंध के समान है कांड के समान तीन धर्म के अलग अलग है ये धर्म के लिए प्रारंभ करते हैं सारे उपासना तो हो गया आगे धर्म के स्कंध धर्म का विभाग करते अलग अलग जिस क्रम से कहा गया ये क्रम नहीं है तीन का नाम लेते हैं अध्ययन दानमिति प्रथम एक अध्ययन और दान ये प्रथम हुआ धर्म का विभाग हुआ तो अध्ययन में अग्निहोत्रादि कर्म करना यज्ञ रह गया यज्ञो अध्ययन दानम यज्ञ अध्ययन दान यज्ञ अग्निहोत्रादि कर्म करना ये गृहस्थ का धर्म है ये नहीं कि पहले गृहस्थ आश्रम ये अर्थ नहीं तीन में से प्रथम कहा गया यज्ञों अध्ययनम दानम। यज्ञ है अग्निहोत्रादि कर्म करे, यज्ञ शब्द से जितने विहित कर्म हो गया, उसके साथ गृहस्थ के लिए वेदाध्ययन भी आवश्यक है, अध्ययन भी करना चाहिए, ऋग आदि वेद का अभ्यास, और दानम ये भी एक गृहस्थ का प्रधान है। तीन यज्ञ भी अध्ययन दानम, ये शास्त्र में कहा गया गृहस्थाश्रम का धर्म। यज्ञ शब्द से अग्निहोत्रादि अन्य विहित कर्म और वेदाध्ययन और दान, ये एक तप एवं द्वितीय। द्वितीय विभाग है तप, ये तप प्रधान होता है वानप्रस्थ आश्रम, द्वितीय हो गया तप। इसमें इसलिए जो क्रम दिया है ये क्रम नहीं, इति विभाग किया। दान में एक दान होता है कर्म करते समय कर्म के अंग में दान आता है, कर्म के अंग में ये कर्म करते समय कुछ दान दक्षिणा देना है, वह दान कर्म का अंग हुआ, कर्म फल ही कर्म का जो फल उसमें अंतर्भूत हो गया, अलग उसका फल नहीं है। कोई कर्म करता है इसमें इतने दान करना है, कोई कोई कर्म में तो सर्वस्व दान करते हैं, जिस कर्म का लिए जिस कर्म के लिए जो दान कहा गया वो दान देना वो अलग है। किन्तु ये जो सामान्य दान है शरणागत संतराणम भूतानां च पहिशनम अहिंसनम बहिर्वेदिचय दानम दत्तम इति अभिधीयते। इष्टा पुरत इष्ट पुरत दत्त तीन कर्म है। दत्त होता है बहिर्वेदीय दानम, वेदी के बाहर, वेदी का अर्थ कर्म के अंग अनुष्ठान करते समय वेदी में जो दान हो तो कर्म के लिए हुआ, वो कर्म को छोड़कर जो दान है उस दान को लेना है वो दान। अब तप हो गया प्रधान वानप्रस्थ आश्रम में, तप अधिक है, कृच्छ चांदन आदि तप करे अर्थात संन्यास भी तप करता है। 75 वर्ष पूरा होने के बाद, 50 वर्ष पूरा होने के बाद 75 तक वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए और तप करना है, बड़े तप उसमें कहा गया। तप करने के लिए शरीर में सामर्थ्य नहीं तो वो शरीर को काष्ठ प्रज्वलित करे, शरीर को उसमें दाह छोड़ दे, त्याग कर दे, ये कहा गया। किंतु अभी कलयुग में ये वानप्रस्थ आश्रम अथवा 75 पूरा हो गया तो संन्यास आश्रम में जाना चाहिए, ये जो क्रम संन्यास कलयुग में नहीं है। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत, ये क्रम हुआ। 25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम में जाए, 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम, 75 के बाद संन्यास आश्रम। यदि वे इतर था ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजेत गृहादवा वनादवा, यदि वह इतर था, यदि वैराग्य है दृढ़ इतरता का, तो पहले तो हा वैराग्य नहीं होने पर भी जाना, यदि वैराग्य है तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजित, ब्रह्मचर्य आश्रम से भी 25 वर्ष होने की आवश्यकता नहीं, सारे वेद अध्ययन के पहले यदि दृढ़ वैराग्य हो जाए तो संन्यास प्रव्रजित छोड़कर चल जाए। किसी का कुछ संस्कार कर्म कुछ वासना थी जिसके कारण का गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गया तो गृहादवा, तो गृहस्थाश्रम में यदि वैराग्य हो गया, निज गृह तूर्णम विनिर्गम्यता भगवान भाष्यकार कहते हैं, वैराग्य हो गया जब वैराग्य बाद छोड़ दो, दृढ़ वैराग्य चाहिए। और वनादवा 50 के बाद वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट है किन्तु वैराग्य हो गया तो चले जाए। जो वैराग्य पूर्वक संन्यास है उसके लिए निषेध नहीं कलयुग में, किन्तु वैराग्य के बिना जो वानप्रस्थाश्रम में जाना संन्यास में आश्रम में जाना वो कलयुग में नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसलिए आई वानप्रस्थ आश्रम करके कहीं चले जाने से कुछ नहीं होता है, संन्यास केवल दीक्षा लेने से नहीं होता है, वैराग्य पूर्वक चाहिए। संन्यास का तो सम्यक न्यास त्याग, सम्यक त्याग है मुख्यतः ऐसा त्रय संन्यास, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ऐसा का त्याग, ऐसा का त्याग है संन्यास, ऐसा त्याग नहीं करे तो संन्यास नहीं है। तो ये हो गया जो वानप्रस्थ आश्रम में तप, तो जिस प्रकार 50 के बाद 75 में जितने तप करने के लिए कहा गया वो तप तो संभव नहीं है, तो भी इतने है 50 वर्ष के बाद थोड़े कुछ गृहस्थ आश्रम का कर्म पूरा करके साधन भजन में लगना चाहिए। ये समझना चाहिए हमारा ये समय हुआ, ये गृहस्थ आश्रम का समय पूरा हो गया, अभी अपना कर्तव्य आत्मा के लिए कुछ करें, कुछ जितने हो सकता है तपस्या व्रत आदि करें।